नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाकाल के भक्त बड़ी संख्या में शिव दर्शन हेतु शिवालयों में जाते हैं और आज हम छिंदवाड़ा जिले के विकास खंड सौसर के निकट मोहगांव में स्थित अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो संक्रांचल की वादियों में 12.5 ज्योतिर्लिंग का आधा ज्योतिर्लिंग माना जाता है और लोगों की इस पर मान्यता है। दूर दराज अंचल से भी महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालु पहुँच कर अपनी आस्था और पूजा करते हैं। और इसी को लेकर आज हमारे साथ संतरांचल की धरती से और महाशिवरात्रि पर्व पर इस ज्योतिर्लिंग के निकट से जुड़े हुए और इस संस्था से भी अपना योगदान दे चुके और अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर गोपाल कुमार वंजारी जी जुड़े हुए। गोपाल जी, मोबाइल ऑडियो के स्वागत सर आपका।
नमस्कार जी।
सर, इस महाशिवरात्रि पर महाकाल के भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
देखिए, ये महाशिवरात्रि बहुत बड़ा महोत्सव होता है क्योंकि हम सनातनी हैं और मैं सभी शिव भक्तों से आग्रह करूंगा कि अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस अर्धनारीश्वर के ज्योतिर्लिंग से के दर्शन के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों का दर्शन का पुण्य मिलता है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि इस अर्धनारीश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, साथ ही इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन में व्यवस्थाओं को बना के रखे, शांतिपूर्ण दर्शन करें, लाइन में दर्शन करें, जो वहां की व्यवस्था है जो बनाई गई है समिति द्वारा उसका उन नियमों का पालन करते हुए दर्शन करें।
सर, क्या संतरांचल की वादियों में अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सर कितना पुराना इतिहास है?
देखिए, इस अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापना काल तो अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए है और विज्ञान के आधार पर जो पिछले बार मेरा आमरण अनशन हुआ था तो उसमें पुरातत्व विभाग की जो टीम आई थी उन्होंने जो ज्योतिर्लिंग के बाहर जो नंदी स्थापित है वो 11वीं सदी परमार राजवंश का होने का उन्होंने अनुमान लगाया। दूसरी बात यह है कि जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो अभी वर्तमान में जो मंदिर का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, वो 13वीं सदी हेमाद्रि पंत राजा के नामक राजा के कार्यकाल का बना हुआ ऐसा अनुमानित है, जबकि वो भी कई बार तोड़कर बनाया गया। उसमें जो दीवालों में जो ट्रेल निकला था तो उसके यानी कि उसके पहले भी मंदिर था, यह अनुमान होता है। तो अब ज्योतिर्लिंग का स्थापना काल तो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ, पर इतना अनुमान लगाया गया कि यह अर्धनारीश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, जो नीचे की पिंडी है वो सरपा नदी के बालू से बनाई गई है और जो ऊपर में जो लिंग है वो कन्हान नदी की जो सफेद बालू है उससे बनाई गई है और दो रंगों से अलग अलग होने के कारण इसको अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
जी सर। सर, इसी को लेकर है कि इसकी क्या विशेषता है इस शिवलिंग की और लोगों की ऐसी आस्था है कि यहाँ पहुंचकर वे अपनी आस्था और पूजा अर्चना करते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए?
देखिए, ज्योतिर्लिंग के बारे में और जो जानकारी मिलती है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण तो नहीं प्रकट हुआ है, ऐसा किद्वंती है। इस किद्वंती के आधार पर यह है कि इस किद्वंती के आधार पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने यहाँ तप किया और तप से शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा गया। तो वर मांगने के उन्होंने ये मांगा कि भाई मुझे शिव माता पार्वती के साथ में आप दोनों दर्शन दीजिए। इस वरदान को पूरा करने के लिए शिव भगवान वहां माँ पार्वती के साथ में प्रकट हुए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ दर्शन दिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का। तो उसके प्रतीक रूप में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग मांग की और वो ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है, ऐसी किद्वंती है।
जी सर। सर, कैसे कैसे देख रहे सर ये जो संतरांचल की धरा पर इस ज्योतिर्लिंग है, इसका सर भौगोलिक क्या स्थिति है? सर, सरपा नदी के किनारे स्थित है, इसकी भौगोलिक कुछ स्थिति है जो पुरातन मिलती है?
जी जी, यह जो ज्योतिर्लिंग सरपा नदी जिसको अभी वर्तमान में नाम है उसका पुराणों में सरपनी नदी के नाम से उल्लेखित है और इस सरपनी नदी का ये विशेषता है कि यह सांप के समान आकार में बहती है। और जैसे कि हमारी हिंदू मान्यता है कि जो नदी उत्तर या पूरब की तरफ बहती है उसको हम पवित्र नदियों में गिना जाता है। और यह सरपा नदी जो है वो चारों दिशाओं की ओर बहती है, जिसमें पूरब भी आ गई उत्तर भी आ गई, तो इसलिए यह पवित्र नदियों में आती है। साथ ही इस नदी का उद्गम से संगम तक पूरा आकार मिलाने पर ओम सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार भौगोलिक स्थिति में इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के जो उल्लेख आता है कि कहाँ, तो अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख में ये आता है कि भी सरपनी नदी के तट पर है और इस ज्योतिर्लिंग से कुछ दूरी पर पूरब की तरफ में एक कुंड है जिसको अमर कुंड लिखा गया है, जो कि यहाँ पर सरपा नदी में 1 फरलांग 2 फरलांग दूरी पर अमर कुंड यहाँ पे ये है। अभी तो क्षतिग्रस्त कर दिए कुछ लोगों ने, लेकिन यहाँ पे अमर कुंड भी है। दूसरी बात यह है कि ये सब ज्योतिर्लिंग का जो सरपनी नदी के दूसरी तट के ओर यहाँ पे विजय पांडुरंग मंदिर है, जो वारकरी भक्त होते हैं, वारकरी भक्त यानी संत एकनाथ महाराज हुए महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत, जिन्होंने देश में मात्र 2 स्थानों पर विजय पांडुरंग मूर्ति के स्थापना की है, जिसमें से एक उनके जन्मस्थली पैठन गांव में है और दूसरी इसी अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने में यहाँ मोहगा हवेली में विजय पांडुरंग की मूर्ति स्थापित की है।
ठीक है, थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर गोपाल कुमार बंजारी जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर महाशिवरात्रि पर संतरांचल की धरा के अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग से वो भक्तों के लिए संदेश और उनके इतिहास से जुड़ी जानकारी मोबाइल वाणी पर साझा की। गोपाल जी, मोबाइल वाणी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सभी मोबाइल वाणी के श्रोताओं को मैं नमन और सब महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान शिव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, भगवान अर्धनारीश्वर सबको सुखी और समृद्ध बनाए, बस इसी आशा के साथ।
जी सर, बड़ा सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।